एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक सा लगे, पर असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरे जुड़ा है, मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी।
हाँ, और इस सफर में हमारी गाइड होंगी जॉन मोनागन और पीटर जस्ट की किताब सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब ना सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।
बिल्कुल, और आज के इस भागते दौड़ते, मतलब इतनी कनेक्टेड पर फिर भी अक्सर बंटी हुई दुनिया में दूसरों को और हाँ खुद को भी समझने का इसका जो तरीका है, जो भूमिका है, वो बहुत जरूरी हो गई है।
सही कहा, ये सिर्फ क्या कहते हैं, दूर दराज के कबीलों की अजीबोगरीब रस्मों की लिस्ट नहीं है।
नहीं,
ये एक तरह का मानसिक औजार है जो हमें वैश्वीकरण, सांस्कृतिक टकराव, सामाजिक बदलाव, इन सब बड़ी चुनौतियों को समझने में मदद करता है।
और इसका एक खास लक्ष्य भी है, हमें अपनी ही मान्यताओं पर, अपने नॉर्मल पर सवाल उठाना सिखाना।
तो चलिए पहले इन लेखकों से मिलते हैं जिन्होंने इस छोटी सी किताब में इतने बड़े आइडियाज डाले हैं। पीटर जस्ट और जॉन मोनागन दोनों जाने माने अमरीकी मानव विज्ञानी हैं।
हाँ, और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ किताबी कीड़े नहीं हैं, इन्होंने सालों तक जमीन पर, मतलब फील्ड में लोगों के बीच रहकर काम किया है।
जैसे पीटर जस्ट, वो विलियम्स कॉलेज में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर डूडोंगो समुदाय के साथ लंबा वक्त बिताया है। उनका काम कानून, झगड़ों को सुलझाने के तरीके, धर्म, इन चीजों पर फोकस करता है। तो वो हमें दिखाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की बातें असल जिंदगी में कैसे दिखती हैं, मतलब पश्चिमी सोच से हटकर।
हाँ, और जॉन मोनागन जो शिकागो में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में है, उनका काम मेक्सिको में ज्यादा रहा है, ऑक्साका और ट्लेक्सकाला राज्यों के मिस्टेक और नहुआ समुदायों के बीच।
अच्छा,
वो धर्म, अर्थव्यवस्था और कैसे ये स्थानीय समुदाय बड़ी दुनिया जैसे सरकार है, बाजार है, इनसे कैसे डील करते हैं, इन सवालों में रुचि रखती हैं।
तो सोचिए, एक इंडोनेशिया का एक्सपर्ट, दूसरा मेक्सिको का।
हाँ,
दुनिया के दो बिल्कुल अलग कोने।
यही चीज इस किताब को एक जबरदस्त तुलनात्मक नजरिया देती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहे, ये अपने अनुभवों से बता रहे हैं कि मानव विज्ञान का असल मकसद या रोल क्या है दुनिया भर में, लोगों को उनकी अपनी शर्तों पर समझना।
बिल्कुल, तो ये किताब करती क्या है? ये मानव विज्ञान का एक बहुत साफ और मजबूत परिचय देती है, और इसका एक बड़ा लक्ष्य है इस विषय से जुड़े मिथकों को तोड़ना।
हाँ, वो वाले मिथक कि मानव विज्ञानी सिर्फ पुरानी हड्डियां खोदते या आदिम लोगों की तस्वीरें खींचते रहते हैं। वही किताब का मूल तर्क ये है कि मानव विज्ञान सिर्फ अजीब रिवाजों का कलेक्शन नहीं है, ये एक शक्तिशाली बौद्धिक तरीका है जिससे हम इंसानी समाज और जिंदगी की जो विशाल विविधता है उसको समझ सकते हैं।
और सेंट्रल आइडिया ये है कि दूसरों की अजीब लगने वाली चीजों को समझकर, जैसे कोई जादू टोने में विश्वास करता है या किसी के रिश्तेदारी की व्यवस्था हमसे बिल्कुल अलग है, तो उनको समझकर हम अपने सामान्य जीवन पर भी सवाल उठा सकते हैं।
हाँ, यही इसका असली रोल सामने आता है, एक तरह से खुद को आईना दिखाना।
ये किताब इस बुनियादी सवाल से जूझती है कि भाई, इंसान होने के इतने अलग अलग तरीके क्यों हैं और इन्हें समझना हमें अपने बारे में क्या सिखाता है।
और ये सीधे सीधे एथनोसेंट्रिज्म पर चोट करती है, मतलब वो आदत ना कि हम अपनी ही संस्कृति को सबसे बेहतर या नॉर्मल मान लेते हैं।
हाँ, और मानव विज्ञान इसका इलाज सुझाता है अपनी अवधारणाओं और खास तौर पर अपनी रिसर्च करने की विधि के जरिए।
तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है कुछ अजीब प्रथाओं से।
हाँ, जो जिज्ञासा जगाती हैं।
बिल्कुल, फिर यह हमें मानव विज्ञान के इतिहास, संस्कृति, समाज जैसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे मिलवाती है। फिर रिश्तेदारी, शक्ति, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात करती है,
और आखिर में ये बताती है कि आज के जमाने में मानव विज्ञान की क्या अहमियत है, इसका क्या रोल है। लक्ष्य है दुनिया को देखने का एक नया नजरिया, एक मानव शास्त्रीय संवेदनशीलता पैदा करना।
चलिए कुछ दिलचस्प उदाहरणों और विचारों में गोता लगाते हैं। किताब शुरू होती है एक क्लासिक उदाहरण से, अफ्रीका के एजेंडे लोगों का जादू टोने में विश्वास।
हाँ, ये बड़ा फेमस है। सोचिए, अनाज रखने का एक भंडार, मतलब ग्रेनरी, गिर जाती है और नीचे बैठे कुछ लोग दब जाते हैं। एजेंडे कहते हैं जादू टोना है।
अब हम तुरंत सोचेंगे, अरे ये कैसा अंधविश्वास, जरूर दीमकों ने लकड़ी खा ली होगी।
बिल्कुल।
और मजे की बात यह है कि मानव विज्ञानी इवांस प्रिचर्ड ने पाया कि एजेंडे भी जानते थे कि हाँ भाई, दीमकों ने लकड़ी कमजोर की थी।
अच्छा, तो फिर जादू टोना क्यों?
उनका सवाल ये नहीं था कि भंडार कैसे गिरा, उनका सवाल था कि वो उसी वक्त क्यों गिरा जब वो खास लोग नीचे बैठे थे।
जादू टोना उनके लिए बदकिस्मती और सहयोग की व्याख्या करता था, मतलब ये समझने का जरिया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
क्या बात है, ये तो बिल्कुल अलग तरह का लॉजिक है। ये उदाहरण मानव विज्ञान के पहले लक्ष्य को दिखाता है, अजीब को परिचित बनाना।
सही, ये समझना कि दूसरे समाजों के तर्क उनके अपने संदर्भ में कैसे काम करते हैं।
और इसी प्रक्रिया में ये हमें अपने वैज्ञानिक तर्क पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या हमारा तर्क ही एकमात्र सही तर्क है?
बिल्कुल, यहीं से एमेक यानी अंदरूनी नजरिया और एटिक यानी बाहरी विश्लेषणात्मक नजरिए की बात आती है।
और ये समझ मतलब रातों रात नहीं आई, मानव विज्ञान का अपना एक इतिहास है जैसा किताब बताती है।
हाँ, 19वीं सदी में कुछ विचारक थे जैसे मॉर्गन टाइलर, वो सोचते थे कि सारे समाज एक ही सीधी रेखा में विकसित होते हैं, असभ्य से सभ्य तक। ये नजरिया जिसे विकासवाद कहते हैं वो आज पूरी तरह खारिज हो चुका है, शुक्र है।
हाँ, फिर आए फ्रांस बोस जैसे क्रांतिकारी विचारक, उन्हें अमेरिकी मानव विज्ञान का पितामह भी कहते हैं।
उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा, नहीं, हर संस्कृति का अपना अनूठा इतिहास होता है और उसे उसी के संदर्भ में समझना चाहिए। इसे कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म और ऐतिहासिक विशिष्टतावाद।
और ये मानव विज्ञान के नैतिक और मेथोडोलॉजिकल रोल की नींव है ना?
बिल्कुल, बोस ने ही जोर दिया कि मानव विज्ञानी को सालों तक एक ही जगह रहकर भाषा सीखकर गहराई से अध्ययन करना चाहिए।
इसी दौरान ब्रिटेन में ब्रोनिस्लॉ मेलिनोवेस्की ने ट्रोबियन द्वीप समूह में ऐसा ही काम करके सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की विधि को स्थापित किया।
हाँ, जो मानव विज्ञान की पहचान बन गई। उनका मानना था कि सांस्कृतिक रीति रिवाज लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। इसे कार्यात्मकता, फंक्शनलिज्म कहते हैं।
और एक और बड़े विचारक थे रैडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने समाज की संरचना पर ज्यादा जोर दिया।
हाँ, कि कैसे परिवार, धर्म जैसी संस्थाएं मिलकर समाज को एक शरीर की तरह संतुलित रखती हैं। इसे संरचनात्मक कार्यात्मकता, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं।
इन शुरुआती विचारों से मानव विज्ञान की दो सबसे जरूरी अवधारणाएं निकलीं, संस्कृति और समाज।
हाँ, तो संस्कृति क्या है? ये सिर्फ नाच गाना या कला नहीं है। मानव विज्ञान के लिए संस्कृति वो साझा ज्ञान, विश्वास, मूल्य और प्रतीक हैं जिनसे हम दुनिया को समझते हैं और उसमें जीते हैं।
और सबसे जरूरी बात, ये सीखी जाती है, ये हमारे खून में नहीं होती।
बिल्कुल, क्लिफर्ड गीट्स ने कहा कि संस्कृति एक टेक्स्ट या किताब की तरह है जिसे मानव विज्ञानी पढ़ने की कोशिश करता है।
उनका वो आंख मारने वाला उदाहरण बहुत मशहूर है।
हाँ, कि आंख मारना क्या ये सिर्फ पलक झपकना है या दोस्ती का इशारा या मजाक उड़ाना? इसका मतलब पूरी तरह सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए गहन विवरण चाहिए।
मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि उसका मतलब क्या है लोगों के लिए।
सही,
संस्कृति वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं। एक स्रोत कहता है, अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही दुनिया को अलग तरह से नहीं देखते, बल्कि वे अलग अलग दुनिया ही देखते हैं।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है।
और अगर संस्कृति अर्थ का ताना बाना है तो समाज उस ताने बाने का ढांचा है।
हाँ, समाज यानी सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं, रिश्ते जैसे परिवार, सरकार, बाजार, इसमें पद, स्टेटस, भूमिका, रोल, संस्था, इंस्टीट्यूशन जैसी चीजें आती हैं।
और समाज सिर्फ व्यक्तियों का झुंड नहीं है, इसका अपना एक वजूद है जो हम पर असर डालता है।
बिल्कुल, और मानव विज्ञान के क्लासिक विषयों में से एक है रिश्ते नारी। हमें लगता है परिवार, लिंग, शादी जैसी चीजें तो प्राकृतिक हैं।
हाँ, मतलब बायोलॉजिकल।
पर मानव विज्ञान दिखाता है कि ये भी संस्कृति से कितनी गहराई से गढ़ी जाती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है अनाचार निषेध, यानी करीबी खून के रिश्तों में यौन संबंध पर पाबंदी, दुनिया की लगभग हर संस्कृति में क्यों है?
इसका कोई जवाब है?
हाँ, एक बहुत दिलचस्प जवाब फ्रांसीसी मानव विज्ञानी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रोक नहीं है, ये समाज बनाने का एक आदेश है।
समाज बनाने का आदेश? कैसे?
ये परिवारों को मजबूर करता है कि वे अपने समूह से बाहर शादी करें, एक्सोगेमी। इससे अलग अलग समूहों में रिश्ते बनते हैं, गठबंधन होते हैं और समाज का जाल फैलता है।
अच्छा, मतलब ये एक्सचेंज और अलायंस बनाता है।
हाँ, ये प्रकृति से संस्कृति की तरफ इंसान का एक बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि कैसे एक नियम समाज की नींव बन सकता है। ये मानव विज्ञान का एक और रोल है, ऐसे गहरे पैटर्न को उजागर करना।
लेकिन मानव विज्ञान सिर्फ छोटे अलग थलग समाजों का अध्ययन नहीं करता, है ना?
बिल्कुल नहीं। किताब जोर देती है कि आज हमें समझना होगा कि हर संस्कृति, हर गांव बड़ी दुनिया से जुड़ा है, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था के धागों से।
हाँ, जैसे उपनिवेशवाद, वैश्विक बाजार, सरकारों की नीतियां, इन सब का असर पड़ता है।
बिल्कुल। एरिक वुल्फ जैसे मानव विज्ञानियों ने दिखाया कि जिन्हें इतिहास रहित लोग कहा जाता था, वो भी सदियों से वैश्विक प्रक्रियाओं का हिस्सा रहे हैं। तो किसी गांव को समझने का लक्ष्य सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकता, उसे बड़े संदर्भ में देखना जरूरी है।
और ये सब समझने का तरीका क्या है, वो सहभागी अवलोकन?
हाँ, मानव विज्ञान की अपनी खास विधि है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है किसी समुदाय में लंबे समय तक रहना, उनकी भाषा सीखना, रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा लेना
और साथ साथ एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह चीजों को नोट भी करना।
सही, ये आसान नहीं है। लोगों का भरोसा जीतना, भाषा की बाधाएं, नैतिक दुविधाएं, क्या देखें क्या लिखें, कल्चर शॉक, बहुत चुनौतियां हैं।
लेकिन इसका लक्ष्य अनमोल है ना, एमिक नजरिया हासिल करना।
हाँ, यानी दुनिया को उसी तरह देखना और समझना जैसे उस समुदाय के लोग खुद देखते हैं, फिर उस समझ को बाहरी दुनिया के लिए एथिक यानी विश्लेषणात्मक भाषा में अनुवाद करना।
तो ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है?
नहीं, ये रिश्ते बनाना, व्याख्या करना और अनुवाद करने की कला है। यही मानव विज्ञान का शिल्प है।
तो इस सब ज्ञान का, इस नजरिए का आज की दुनिया में क्या काम है? क्या ये सिर्फ अकादमिक चीज है?
किताब कहती है बिल्कुल नहीं, इसका असली रोल हमारी रोजमर्रा की और पेशेवर जिंदगी में है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरी संस्कृतियों को समझे बिना कितनी गलतफहमियां हो सकती हैं।
हाँ बिल्कुल। और स्वास्थ्य सेवाओं में?
वहां भी ये समझने में मदद मिलती है कि लोग डॉक्टरों की सलाह क्यों नहीं मान रहे। शायद मामला अज्ञानता का नहीं, बल्कि बीमारी या शरीर के बारे में उनकी अपनी गहरी मान्यताओं का है।
तकनीक डिजाइन करने में भी इसका रोल है?
हाँ,
कंपनियां मानव विज्ञानियों को रखती हैं ये देखने के लिए कि लोग असल में उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं। विकास परियोजनाओं में स्थानीय संस्कृति और जरूरतों को समझे बिना बनी योजनाएं अक्सर फेल हो जाती हैं।
और शिक्षा में भी?
जरूर, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए छात्रों को बेहतर समझने में मदद मिलती है।
तो कुल मिलाकर इस किताब और मानव विज्ञान से कुछ बड़े सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी, जैसा हमने कहा, अजीब को परिचित और परिचित को अजीब बनाना।
हाँ, दूसरों को समझने की कोशिश हमें अपनी सामान्य चीजों पर भी सवाल उठाना सिखाती है।
दूसरा, संस्कृति की ताकत। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखते, हम उसे अपनी संस्कृति के चश्मे से देखते हैं।
हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, सब पर संस्कृति का गहरा असर होता है।
तीसरा, संदर्भ का महत्व। किसी भी रिवाज, विश्वास या व्यवहार को उसके अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। चीजों को अलग थलग करके देखना गुमराह कर सकता है।
हाँ, मानव विज्ञान हमेशा समग्रता, होलिज्म पर जोर देता है। चौथा, जमीनी हकीकत का सम्मान, यानी सहभागी अवलोकन का महत्व। लोगों को समझने के लिए उनके साथ रहना, उनकी सुनना जरूरी है।
सिर्फ दूर बैठकर सिद्धांतों पर बात करने से काम नहीं चलता।
और पांचवा, मानव विज्ञान की प्रासंगिकता, इसका बढ़ता हुआ रोल। ये सिर्फ अतीत या दूर दराज के समाजों के बारे में नहीं है, ये आज की जटिल दुनिया, हमारे अपने समाज और हमारे अपने जीवन को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
और भारत जैसे विविधता भरे देश में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, जहां हमें रोज अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाजों से रूबरू होना पड़ता है।
किताब में कुछ पंक्तियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे ये विचार कि मानव विज्ञान का लक्ष्य सिर्फ दूसरों के रिवाजों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इंसानी विविधता के आईने में अपने जीवन के तौर तरीकों की खासियत को समझना है। ये परिचित को अजीत बनाने की कोशिश है।
सही, मतलब दूसरों को जानकर ही हम खुद को पहचानते हैं।
और संस्कृति पर वो बात, संस्कृति वो लेंस है जिससे हम हकीकत देखते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही दुनिया को अलग नजर से देखते हैं, वे अलग अलग दुनिया देखते हैं।
ये याद दिलाता है कि जिसे हम सच मानते हैं वो भी काफी हद तक हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। या जैसे एक स्रोत कहता है, संस्कृति वो चीज नहीं जो लोगों के पास होती है, ये वो चीज है जो लोग करते हैं।
मतलब संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
हाँ, फील्ड वर्क के बारे में ये बात भी दमदार है। किसी समाज को सच में समझने के लिए आप बाहर खड़े होकर सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकते, आपको अंदर कदम रखना होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना होगा, दुनिया को उनके नजरिए से देखना सीखना होगा।
गहरी समझ के लिए डूबना जरूरी है।
बिल्कुल। और लेवी स्ट्रॉस का अनाचार निषेध पर विचार कि ये समाज बनाने का आदेश है, दिखाता है कि कैसे मानव विज्ञान उन अदृश्य नियमों को उजागर करता है जो हमारे सामाजिक जीवन को आकार देते हैं।
ये मानव विज्ञान का एक अहम विश्लेषणात्मक रोल है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
देखिए, जब हम किसी दूसरे देश या अपने ही देश में किसी अलग संस्कृति के इलाके में जाते हैं, तो मानव शास्त्री नजरिया हमें सिर्फ चीजों को अजीब या गलत कहने से रोकता है।
हाँ, हम पूछने लगते हैं, अच्छा यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है?
ये हमें ज्यादा सम्मानजनक और जिज्ञासु बनाता है।
दफ्तर में ही सोचिए, अलग अलग बैकग्राउंड के सहकर्मी हैं, कोई हमेशा देर से आता है, कोई मीटिंग में चुप रहता है। हो सकता है ये सिर्फ व्यक्तिगत आदतें न हो,
बल्कि समय या संवाद को लेकर उनकी सांस्कृतिक समझ अलग हो। इस नजरिए से हम बेहतर टीम बना सकते हैं।
हाँ, स्वास्थ्य के मामले में भी, क्यों कुछ समुदाय किसी खास इलाज से हिचकते हैं? शायद बीमारी को लेकर उनकी धारणाएं अलग हैं। इसे समझने से स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं।
या जब हम कोई नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे कैसे अपनी जिंदगी में फिट करते हैं, ये समझना डिजाइनरों के लिए जरूरी है। मानव विज्ञान यहां भी मदद करता है।
और सबसे बड़ी बात, ये हमें खुद पर सोचने को मजबूर करता है। हमारी पसंद नापसंद, हमारे मूल्य जिन्हें हम मेरा अपना मानते हैं, वे कितने हमारे हैं और कितने समाज और संस्कृति की देन है।
हाँ, ये आत्मचिंतन हमें ज्यादा खुला और सहिष्णु बना सकता है। ये पूर्वाग्रहों को पहचानने और कम करने में मदद करता है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि मानव विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का, समझने का एक तरीका है, एक सलीका है। ये हमें सिखाता है कि इंसानी विविधता कोई समस्या नहीं, बल्कि हमारी प्रजाति की ताकत और रचनात्मकता का सबूत है।
और ये हमें सवाल पूछना सिखाता है, खासकर उन चीजों पर जिन्हें हम मानकर चलते हैं।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि हमें विनम्र बनाता है। ये एहसास कि हमारी अपनी सच्चाई, हमारा कॉमन सेंस भी एक सांस्कृतिक रचना है, हमें दूसरों के प्रति ज्यादा खुला और सहिष्णु बनाता है।
ये हमें दिखाता है कि दुनिया को देखने के और भी कई मान्य तरीके हो सकते हैं। मानव विज्ञान का ये रोल हमें जाति केंद्रवाद से मुक्त करना आज बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। जॉन मोनागन और पीटर जस्ट की ये किताब इस सफर पर निकलने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये दिखाती है कि इस उलझी हुई दुनिया में दूसरों को उनकी शर्तों पर समझने की कोशिश करना कोई किताबी शौक नहीं, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा हमदर्द दुनिया बनाने के लिए जरूरी है।
सही कहा, ये मानव विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाल में हुई किसी बातचीत या देखी किसी घटना के बारे में सोचिए, क्या उसमें कोई ऐसी बात थी जिसे आप मानव शास्त्रीय नजरिए से, मतलब संस्कृति, संदर्भ, शक्ति संबंधों के नजरिए से देखकर कुछ नया समझ सकते हैं?
हाँ, उन छुपी हुई सांस्कृतिक मान्यताओं या सामाजिक दबावों के बारे में सोचिए जो शायद सतह के नीचे काम कर रहे हों।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।